श्रीनारदोवाच पौरोहित्याय भगवान् मृतः काव्यः किलासुरैः षण्डामर्कौ सुतौ तस्य दैत्यराजगृहान्तिके तौ राज्ञा प्रापितं बालं प्रह्लादं नयकोविदम् पाठयामाश तु पाठ्यान् अन्यांश्च शुरबालकान् यत्तत्र गुरुणा प्रोक्तम् शुश्रुवेनुपपाठ च न साधु मनसा मेने स्वपराशदग्रहाशयम् एकदा सुरराजपुत्रम् अङ्कमारोप्य पाण्डव पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद्भवान्। श्री प्रह्लाद उवाच तत् साधु मन्ये असुरवर्ज देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो जद् हरिमाश्रयेत। श्री नारद उवाच। श्री नारद जी ने कहा पौरोहित्याय पुरोहित का काम करने के लिए भगवान सर्वज्ञ वृतः वरण किए गए काव्यः कवि के पुत्र शुक्राचार्य किला निश्चित असुरही असुरों द्वारा संडा मरकौ संड और अमर्क सुतौ तस्या उनके दो पुत्र थे दैत्यराज गृहांतिके दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के राजभवन के निकट रहते थे। तो राजसूय सभा में महाराज युधिष्ठिर का प्रश्न है नारद मुनि से कि हिरण्यकश्यपु अपने अतिशय गुणवान पुत्र से भी द्रोह क्यों किया और इतना द्रोह कि उनका वध करना चाहा, इसमें क्या कारण था। कारण प्रह्लाद की भगवत भक्ति थी, उसका हिरण्यकश्यपु का द्वेष था भगवान से और प्रह्लाद निकल गया पर भगवान का भक्त, इस कारण से इसको मारना चाहता था। तो प्रह्लाद महाराज की भगवत भक्ति का वर्णन अब यहां से प्रारंभ किया जा रहा है। तो शुरू में पूछा था युधिष्ठिर महाराज ने कि हिरण्यकश्यपु क्यों विद्रोह किया प्रह्लाद से और प्रह्लाद किस तरह से भक्ति किए भगवान की, इन दो का वर्णन कीजिए। तो अब प्रह्लाद महाराज के कृष्ण भावना का वर्णन प्रारंभ किया जा रहा है, उनके गुणों का वर्णन किया गया, अब इनके भक्ति के प्रभाव का वर्णन किया जा रहा है। असुर ही भगवान काव्य पौरोहित्याय वृत, असुरों ने शुक्राचार्य को अपने पुरोहित के रूप में वरण किया। पुरोहित का अर्थ होता है पुरह हितम करोति इति पुरोहित, जो यजमान के साथ रहकर आगे आगे रहकर हित करे उसको पुरोहित कहते हैं। कई वेद के कर्म हैं और लक्ष्य है, उनको जजमान का ज्ञान नहीं होता है कि कौन कर्म का क्या फल होगा, कैसे कराया जाएगा। तो जजमान का हित करने के लिए ब्राह्मणों में कोई व्यक्ति वेदज्ञ होता है तो वह कर्म कराता रहता है, तो उसको पुरोहित कहते हैं। तो असुरों ने शुक्राचार्य जैसे महाविद्वान को अपना पुरोहित चुना, तो इनकी विद्वता विश्वविख्यात है, इसीलिए इन्हें नारद जी भगवान कह रहे हैं, भगवान काव्य। शुक्राचार्य के पिता का नाम था कवि, ये भृगु वंश में जन्म लिए थे शुक्राचार्य। तो कवि का पुत्र होने से इनको काव्य कहते हैं, ये अपत्यवाचक शब्द है संस्कृत में, जिसे भरत का पुत्र होने से भारत कहा जाता है, उस तरह से कवि का पुत्र होने से शुक्राचार्य को काव्य कहा जाता है। और भगवान कहा गया इसलिए कि वास्तव में वेद के परम विद्वान है। असुरों ने इनको क्यों चुना अपना पुरोहित, इसमें भी कारण है। शुक्राचार्य का बृहस्पति से द्वेष चलता था और बृहस्पति जी देवताओं के पुरोहित हैं, तो स्वाभाविक ही असुरों ने इनको अपना पुरोहित चुना। यह राजनीति संसार में अनादि काल से चलती आ रही है। क्यों नहीं अपने शत्रु के विपक्ष को ही अपना व्यक्ति बना लिया जाए। क्यों कलह था, क्यों झगड़ा था, उसकी भी विशद कथा है। तो जैसे भी बृहस्पति में और शुक्राचार्य में बनता नहीं था, और बृहस्पति से ज्ञान में शुक्राचार्य आगे हैं, ये कैसी विद्या जानते हैं शुक्राचार्य, किसी व्यक्ति को टुकड़ा टुकड़ा काट दिया जाए वो मर जाए तो फिर भी ये जिला सकते हैं, मृत संजीवनी विद्या जानते हैं, जो बृहस्पति जी नहीं जानते हैं। और ऐसी बहुत सी नीतियां हैं जो शुक्राचार्य जानते हैं, देवगुरु बृहस्पति जी नहीं जानते। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कई जगह प्रवचन किए हैं, तो बारम्बार शुक्राचार्य की नीति का उल्लेख किए हैं कि शुक्राचार्य इस विषय में ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं। तो विश्व के माने हुए विद्वान हैं, इनकी सहायता से असुर लोग देवताओं पर विजय चाहते थे और कई बार विजय प्राप्त किए हैं। बलि महाराज इनकी कृपा से स्वर्ग पर विजय प्राप्त किए थे, इन्होंने यज्ञ कराया था, क्या क्या कराया था, और मरे हुए बलि को इन्होंने एक बार जिलाया था। तो शुक्राचार्य को इसलिए हम भगवान कहा जा रहा है, भगवान काव्य, भगवान शुक्राचार्य, मतलब शक्तिमान शुक्राचार्य। इनको हिरण्याक्ष आदि असुरों ने, हिरण्यकश्यप आदि असुरों ने अपना पुरोहित चुना। तो इस कारण से जब ये राजगुरु हुए, पुरोहित चुने गए, तो इनके लड़के भी अब राजा के घर के पास ही रहने लगे, मतलब उनको भी एक सरकारी क्वार्टर दिया गया इनके बच्चों को। सरकार का, राजा का गुरु हो गए तो इनको तो भवन मिला है, मतलब इनको खूब सुंदर भवन मिला होगा, राजा के घर के पास, राज गृहांति के, अंति के मतलब समीपन, दैत्य राज के गृह के निकट राजभवन में, उसे उसी कंपाउंड में नहीं मिला लेकिन निकट ही बहुत सुंदर भवन मिला, और उसी में इनके दोनों लड़के रहते थे, शुक्राचार्य के दोनों पुत्र है संड और अमर्क। संड अमर्क सुत तस्य दो पुत्र रहते थे। तो हिरण्यकश्यप आदि को नीति सिखाने वाले तो शुक्राचार्य थे, लेकिन बच्चों को राजनीति सिखाने वाले या दंड नीति, जो भी नीतियां सिखानी थी, वो शुक्राचार्य के पुत्र सिखा रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को वे लोग पढ़ा रहे थे, और हिरण्यकश्यप आदि को शुक्राचार्य पढ़ा रहे थे। ठीक जोड़ी बैठी थी, बच्चों को लड़के पढ़ाएं, ऐसे वो सांड और मर्क बच्चे नहीं थे, लेकिन फिर भी शुक्राचार्य के पुत्र थे, आयु में छोटे थे बहुत, तो वे लोग पढ़ाते थे। सौराज्ञा प्रापितम बालम प्रहलादम नय को विदम पाठ्या मा सतु पाठ्यान अन्य चासुर बालकान। तो तौ संड और अमर्क शुक्राचार्य के दोनों पुत्र प्रहलाद को पढ़ाते थे। प्रश्न होता है कहाँ पढ़ाते थे, तो राज्ञा प्रापितम बालम, राजा ने अपने पुत्र को ले जाकर के दिया गुरुपुत्रों को कि आप लोग इन चीज को पढ़ाया कीजिए। लोग अपने घर में पढ़ा रहे थे, पहले लड़के पढ़ने जाते थे अपने गुरु के घर, गुरु जी आकर घर पर ट्यूशन नहीं करते थे। नियम था, पहले गुरु के घर में जाना पड़ता था, गुरुकुल कहते थे उसको, क्योंकि अपने घर रहकर के लड़के अच्छा नहीं पढ़ सकते, ये हो ही नहीं सकता। हमने तो देखा है भारतवर्ष में घर पर रहने वाले लड़के गांव में खास करके दो चार दिन स्कूल जाएंगे तो दूसरे दिन बकरी चराने चले जाएंगे। ऐसे किसी दिन स्कूल गए तो किसी दिन नहीं गए, किसी दिन कुछ किए, घर पर घर का अभिनिवेश रहता है, इसलिए पढ़ने वाले लड़कों को घर छोड़कर पढ़ना चाहिए। तो यहाँ लिखा गया राज्ञा तृतीया में राजा के द्वारा प्रापित भेजा हुआ लड़का प्रहलाद को लोग पढ़ाने लगे। अन्य असुर बालका में और अन्य भी असुर बालकों को पढ़ाते थे, केवल प्रहलाद ही नहीं थे और भी बहुत से लड़के थे असुर बालक, उनको वे दोनों पढ़ाया करते थे। क्या करने के लिए, नए कोविदम, राजनीति में दक्ष बनाने के लिए वे पढ़ा रहे थे। प्रहलाद राजा का पुत्र था इसलिए प्रहलाद को पढ़ाना था कि कैसे टैक्स वसूलना चाहिए, कैसे अपराधी को दंड देना चाहिए, कितना कोष संग्रह करना चाहिए, विपक्षी राजा पर कैसे चढ़ाई करनी चाहिए, कैसे शासन करना चाहिए, अपना मित्र और शत्रु ठीक से पहचानना चाहिए, राजा को तो यही सब सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं कि प्रत्येक आदमी बस कंप्यूटर ही सीखे। वो सब पढ़ाई होती थी, क्षत्रियों को क्षत्रिय की पढ़ाई सिखाई जाती थी, वैश्यों को धन कमाने की शिक्षा दी जाती थी और शूद्रों को किस तरह से सेवा की जाती, विविध कला आर्ट वगैरह की शिक्षा दी जाती थी और ब्राह्मणों को वेद शास्त्र पढ़ाया जाता था ज्यादा से ज्यादा त्याग पूर्वक रहने के लिए। तो यह चूंकि एक राजा का पुत्र था प्रहलाद, इसलिए ये सिलेबस रखा गया था किस तरह से कर संग्रह करना चाहिए, किस तरह शासन करना चाहिए, सेनापति कैसा बनाना चाहिए, मंत्री कैसा रखना चाहिए, सैनिकों की बहाली करनी हो तो उनमें क्या क्या गुण होना चाहिए, किस समय आक्रमण करना चाहिए दूसरे राजा पर, कैसा दुर्ग बनाना चाहिए, कैसा किला बनाना चाहिए, कैसा कोष संग्रह इत्यादि, सब बहुत सावधान रहना चाहिए राजनीति। तो प्रहलाद को यह सिखाया जाता था, इसीलिए हम नए कोविदम शब्द आया है कि उसको राजनीति में विशारद बनाने के लिए शुक्राचार्य के दोनों लड़के पढ़ा रहे थे और अन्य भी बच्चों को पाठया मासतु पाठ पढ़ा रहे थे। तो पहले पाठ में रटाना बहुत जरूरी रहता था, श्लोक रटवा करके तब उसका अर्थ बताते थे, और अब तो याद हो चाहे ना हो बस सब चीज कंप्यूटर में हो गया है। हम एक बार देखे व्यक्ति क्लास ले रहा था, कथा कह रहा था, तो ये श्लोक याद करना हो तो बगल में कंप्यूटर हो गया, यहाँ रखो वहां क्या रखे हैं। सुखदेव गोस्वामी तो ऐसे भागवत भी नहीं रखे, सब कुछ से हृदयस्थ होना चाहिए। तो पहले के लड़कों को इसीलिए पाठ पढ़ाया जाता था, रटे बहुत देर तक वे रटते थे, रटते रटते वो सारी बातें याद हो जाती थी, जीवन भर याद रहती थी। तो पढ़ाते थे, अर्थ बताते थे, तो इस तरह पढ़ा रहे थे। तो यहाँ प्रश्न होता है प्रहलाद महाराज पढ़ रहे थे क्या, इस प्रकार की शिक्षा, ये शत्रु है, ये मित्र है, ये ऐसे धन कमाना चाहिए, ऐसे आक्रमण करना चाहिए, क्या ये पढ़ रहे थे। तो कहते हैं नारद यहाँ पढ़ रहे थे, जब तत्र गुरुणा प्रोक्तम, जो जो बातें गुरु के द्वारा कही जा रही थी सुश्रुवे, उसको वे सुनते थे, और कपाठ च अनुपपाठ च, और सुन करके ठीक वैसा बोलते थे। प्रहलाद महाराज पढ़ने में कमी नहीं करते थे, सुनते थे, सुन करके याद कर लेते थे, और गुरु जी पूछते थे याद हुआ तो अनुपपाठ, हाँ इसके बाद पाठ सुना देते थे, लेकिन न साधु मन सामने, लेकिन मन से उसे अच्छा नहीं मानते थे। उन्होंने सोचा कि अगर पढ़कर नहीं सुनाऊंगा तो ये ज्यादा उपद्रव करेंगे, इसीलिए उसको याद करके सुना देते थे, लेकिन मन से अच्छा नहीं मानते थे। मनसा साधु नाम है, उसको अच्छा नहीं मानते थे। क्यों क्यों अच्छा नहीं मानते थे उस पढ़ाई को? क्योंकि स्व पर असत ग्रास है, उसमें हमेशा यही बात आती थी स्व और पर का, यह मैं हूं, यह मेरा है, वह दूसरा है, वह शत्रु है, हमेशा भेद भावना, देह को मैं मान करके और देह के संबंधियों को मेरा मान करके केवल यही पाठ चलती थी स्व पर। यह मिथ्या अभिनिवेश ही जिसका आश्रय था उस पढ़ाई को यह अच्छा नहीं मानते। इस संसार में कौन किसका शत्रु है और कौन किसका मित्र है, लेकिन ऐसा अभिनिवेश हो गया है प्रत्येक व्यक्ति को कि ये परिवार के इतने लोग मेरे हैं, और क्यों मेरे हैं? क्योंकि मैं देह हूं। यह मिथ्या अभिनिवेश है कि मैं देह हूं और देह के संबंध ही मेरे। कभी कभी लोग पूछते आपका कोई है इस दुनिया में, किसी साधु से पूछता आपका कोई है, तो आपका क्या मतलब? मतलब देह का संबंध, आपका भाई या माता पिता या वाइफ जो भी है, ये पूछने का कारण है। लेकिन और क्या दुनिया के और लोग अपने नहीं है क्या? अगर पूछा आपके कौन है तो कोई कोई ऐसे महात्मा है जो बताते सर वसुधैव कुटुंब, बताऊ संपूर्ण वसुधा ही कुटुंब है, सभी हमारे अपने हैं। लेकिन इतनी संकीर्ण बुद्धि हो गई है इस देह के कारण, और इसी कारण से होता है कि हम राजा बने उसको परास्त कर दें। बहुत से ग्रुप होते हैं, अपना पक्ष और विपक्ष, इस दल के हम हैं और दूसरा पराया है, शत्रु है, ये है वो है, और इसी प्रकार की पढ़ाई चल रही है सब जगह, खास करके राजाओं के लड़कों को तो ये बात कूट कूट करके पढ़ाई जाती है। तो प्रहलाद महाराज इसी से अच्छा नहीं मानते थे, वो तो सबने परमात्मा को कृष्ण को देखने वाले थे, सबको कृष्ण के अंश के रूप में देखते थे, और इस दशा में उनको ये पढ़ाया जाए कि वो शत्रु है, उसको ऐसे मारो, उसको बंद करो, उसको जेल में बंद करो, उससे कर वसूल करो, फिर अपने परिवार को पोसो, ये करो वो करो, ऐसा करो कि राजगद्दी बनी रहे, कोई खतरा न करे, अपने भाई पर भी चौकन्ना रहो, देखते रहो वो कहीं राजगद्दी तो नहीं लेना चाहता है, कई प्रकार की बात है। तो इसीलिए उस पढ़ाई को साधु न माने, मन में वे अच्छा नहीं मानते, पढ़ लेते थे लेकिन अच्छा नहीं मानते। तो कुछ महीने तक वे पढ़े गुरु के यहां रहकर, कोई समर वोकेशन हुआ होगा, चाहे कोई छुट्टी का दिन आया होगा, वो लौटे घर और उनको लेकर के गुरु के पुत्र आए, संड और अमर्थ लेकर के आए, इनाम लेने के लिए भी आए होंगे कि पढ़ाए हैं और बहुत बढ़िया पढ़ा है, और राजा जब सुनेगा तो हम लोगों पर खुश होगा, तो हमारा वेतन भी बढ़ा सकता है, तो जो कुछ करना होगा करेगा। तो लोग लेकर के प्रहलाद को आए। एकदा असुर राज पुत्र अंकम आरोप्य पांडव, यहां संबोधन करें नारद जी कि हे पांडव, हे महाराज पांडु के पुत्र युधिष्ठिर, एक बार असुर राज हिरण्यकश्यपु पुत्रम अपने पुत्र प्रहलाद को अंकम आरोप्य गोद में लेकर और पप्रच्छ पूछा। ये बात आगे चलकर खुलेगी। प्रहलाद महाराज आए तो प्रणाम किए, सष्टांग प्रणाम किए, तो प्रणाम करते समय उठा करके गोद में रख लिया, पुत्र से प्रेम है ही, भले भगवान से द्रोह है लेकिन बेटा से तो प्रेम है इसको, तो पुत्र को अंक में आरोपित कर लिया। 5 वर्ष के प्रहलाद थे तो गोद में रख लिया अंक में, और बड़े प्यार से पूछा। कोई भी पुत्र अपने कोई भी पिता अपने पुत्र के पढ़ाई को जानना चाहता है, कैसा पढ़ रहा है, ठीक से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कैसी बुद्धि है, क्या है, जानना चाहता है। तो गोद में रह करके पूछा, कथ्यताम वत्स मन्यते साधु जब भवान। वत्स बेटा, तुम जो गुरुओं से पढ़े हो तो उसमें से कौन सी बात तुमको अच्छी लगती है, कोई एक अच्छी बात बताओ। साधु माने अच्छी, जब साधु मन्यते, जिसको तुम साधु मानते हो, अच्छा मानते हो, उसमें से एक बात सुनाओ। तो ये तो सोचा था कि ये हमारा बेटा बोलेगा कि इस तरह शासन करना चाहिए, इस तरह सेना संचय करना चाहिए, दूसरे राजा को हराना चाहिए, बच्चा ये बोलेगा, वो ये सोच रहा था। इसीलिए उसने कहा कि जब साधु मन्यते, जिसको तुम अच्छा मानते हो, वो बात सुनाओ। प्रहलाद महाराज अच्छी बात सुना रहे हैं, कोई बोले तत् साधु मन्ये असुरवर्ज देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम शग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो जद हरिमाश्रयेत। मिलता है पिताजी, वन में जाकर भगवान कृष्ण का भजन किया जाए, मैं इसको अच्छा मानता हूँ। वनम गतो जब हरिम आश्रये, और वो भी घर छोड़कर, हित्वात्म पातम गृहमंधकूपम, अंधकूप और आत्मा का पात कराने वाला, पतन कराने वाला अपना घर छोड़ करके वृंदावन में जाकर भगवान का भजन किया जाए, मैं इसको अच्छा मानता हूं। ये सुना तो सुनकर के वो दुखी नहीं हुआ, हंसने लगा। इस बार अभी वो गहराई नहीं समझ रहा था बेटा की कितनी गहराई, उसने सोचा कि वो कोई स्कान कया कर सिखा दी। उसने ये सोचा कोई आकर के सिखा दिया। तो गुरु पुत्रों से कहा कि सावधानी से पढ़ाओ, कोई भी आने ना पावे, कोई वैष्णव लोग भेष बदल बदल कर चला करते हैं, कोई आने ना पाए, लगता है कोई वो कृष्ण के पक्ष का सिखा दिया इसको। तब ये बोल रहा है, इसके मन में कोई असर नहीं, सुना है श्लोक याद करके बोल दिया। उसने यही सोचा। तो प्रहलाद महाराज साधु बात बोल रहे, बहुत अच्छी बात, इसकी जरा व्याख्या हम लोग करेंगे सुनेंगे। सभी आचार्यों ने व्याख्या की, तो कहते हैं प्रहलाद महाराज पिता संबोधन नहीं किए, असुर वर्ज संबोधन के, हे असुरों में श्रेष्ठ, यह संबोधन कर रहे हैं। तो प्रसन्न नहीं हुआ, कोई दुखी नहीं हुआ। उसने सोचा हिरण्यकश्यप ने कि बेटा जो है हमारे पितृत्व को उतना महत्व तो नहीं दे रहा है जितना राजापन है, तो मुझे राजा कह रहा है तो अच्छा है। ऐसे कहा होता कि हे पिताजी तो स्नेह होता, लेकिन जब प्रहलाद ने कहा हे असुर वर्ज, तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि हमारे राजापना के महत्व को जान रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं। अभी समझ रहा है कि राजा क्या चीज होता है। तो असुर वर्ज संबोधन से प्रसन्न हुआ, हे असुर वर्ज, हे असुरों के राजा, सदा समुद्विग्न धियान देहिनाम तप साधु मन में, जिनकी बुद्धि हमेशा दुखी है, विषाण है इस संसार में, उन देहधारियों के लिए मैं यह अच्छा मानता हूं कि घर गृहस्थी को छोड़कर कहीं वन में जाकर भगवान कृष्ण का भजन किया जाए, बस यही अच्छा मानता हूं। यह मूल वाक्य का अर्थ साधु मन में। यह प्रहलाद महाराज अपनी दिव्य बुद्धि से जो अच्छा मान रहे हैं उसको कह रहे हैं, तब साधु मन में, मैं इसको अच्छा मानता हूं, किसको, कि वन में जाकर भगवान का भजन किया जाए, किसको अच्छा मानता, किसके लिए, देहिना देहधारियों के लिए, जो प्राकृत देह धारण किए हैं उनको चाहिए कि भगवान कृष्ण की भक्ति करें, यही अच्छा है। कैसे देहधारी सदा समुद्विग्न धियां, जिनकी बुद्धि इस संसार में हमेशा दुखी है, उद्विग्न, कभी क्रोध, कभी शोक, कभी लोभ, कभी काम, इस तरह के भावों से जिनकी बुद्धि आक्रांत रहती है उनको समुद्विग्न ध्यान कहते हैं। सम्यक उद्विग्न भी जिनकी है, जिनकी बुद्धि कंप्लीटली उद्विग्न रहती है, हमेशा दुखी रहती है संसार में, कभी सुख का दर्शन नहीं कर सकी जो बुद्धि। जो इस संसार में वास्तव में देखा है तो सभी जीव दुखी, चिंतित। आज तक आपने कहीं भी यह लिखा हुआ पढ़ा है कि अब आप बहुत दिन सुख से रहे, थोड़ा अब रोइए चाहे दुखी होइए? कभी नहीं। कहना पड़ता है कि मुस्कुराइए, लिखा जाता है ना मुस्कुराइए। जब किसी का फोटो लेना होता है खास करके तो स्टूडियो में लोग कहते हैं जरा मुस्कुराइए, लोग चाहते हैं कि एक हंसता हुआ चेहरा आ जाए, लेकिन ऐसा कहने पर वो आदमी और गंभीर हो जाता है तो जो पहले से हंसता है वो भी गायब हो जाता, चिंता का भार है सिर पर। सदा समुद्विग्न धियां, हमेशा बुद्धि विषाण है, दुखी है, क्यों? असद ग्रहात। असद ग्रहात शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, असद ग्रहात, असद को पकड़ने के कारण। असद सद का अर्थ होता है नित्य वस्तु, और असद का अर्थ है टेम्पररी, जो वस्तुएं रहेंगी नहीं उन्हीं वस्तुओं को ये पकड़ कर रहना चाहता है। टेम्पररी या नश्वर वस्तुओं का संग्रह करके उनके साथ सुखी होना चाहता है। तो असद ग्रह क्या है? असद आग्रह या असद ग्रह या असद विचार, अभिनिवेश कहिए, मिथ्या अभिनिवेश, जो हम नहीं है वैसे भाव में रहना, तो अहम ममेति इसको असद अभिनिवेश करते। अहम मम इति, मैं देह हूं और देह से संबंधित लोग और वस्तुएं मेरी, ये है असद ग्रह बुद्धि का। मन में ये बात बैठी हुई, जबकि यह देह नश्वर है, ये जाने वाला है। कई बार ऐसा देह हम लोग प्राप्त किए हैं और कई बार आगे चलकर प्राप्त करेंगे। संस्कृत में कवि ने कहा है कि जितने बंधु, जितने संबंधी हम लोग अनंत जन्मों में पाए और छोड़ चुके, उतने बालू गंगा जी में नहीं है, ऐसा कहा है। इतना ज्यादा हम संबंधी छोड़ चुके हैं, अनादिकाल से तो जन्म ही ले रहे हैं, और जन्म लिए तो प्रत्येक शरीर में स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, मामा, काका, चाचा, ये सब होते आए और छूटते गए। लब्धास्त्यक्ताश्च, जितना हम पाए संबंधी और जितना छोड़े उतना गंगा जी में बालू भी नहीं। हो सकता है वास्तव में उतना बालू न हो, कोई अतियुक्ति नहीं है, इतना ज्यादा छोड़ चुके, लेकिन वर्तमान शरीर में ऐसे बंधे हुए हैं कि हम सोचते हैं कि बस हम यही हैं और इस शरीर से जिनका संबंध है वही हमारे संबंधी हैं, इसके पहले कोई नहीं थे न बाद में होंगे। और इस शरीर को जब हम छोड़ देंगे तो संबंधियों को भी भूल जाएंगे, फिर याद भी नहीं आएगी, और जो शरीर मिलेगा उसी शरीर के संबंधियों की याद हमेशा रहेगी। मानते रहेंगे मैं यह हूं और मेरा यह है, मेरे लिए यह जरूरी है, इसको असद आग्रह कहते हैं, असद ग्रह। और संसार में जिन वस्तुओं का, जिन लोगों का हम साथ चाहते हैं तो वियोग होता रहता है। हम चाहते हैं इस व्यक्ति से हमारा वियोग ना हो, लेकिन होकर कहीं रहेगा, क्यों? कि ये वस्तुएं या लोग असत, असत सत का अर्थ टिकना, रहना, अकार्थ नहीं। हम जिस रूप में चाहते हैं और जितना काल तक चाहते हैं वस्तुओं का संयोग, उस रूप में और उतने काल तक संयोग नहीं रहेगा। कौन व्यक्ति चाहता है कि हमारी स्त्री हमसे वियुक्त हो जाए? कोई चाहता है? लेकिन वियोग अवश्यंभावी है, ये होगा। और इसका प्रमाण यह है कि विवाह के पहले कोई पता ही नहीं था व्यक्ति को कि कौन लड़की हमारी स्त्री बनेगी, कुछ था पता? वो भी अव्यक्त था, कुछ पता नहीं। तो जैसे विवाह के पहले पता नहीं था, उसके बाद फिर पता ही नहीं लगेगा कौन स्त्री हमारी पत्नी थी, ये भी नहीं स्मरण रहेगा दूसरे शरीर में। मैं ये कह रहा हूं दूसरा शरीर तो मिलेगा ही। जो लोग मानते ही नहीं है कि पुनर्जन्म होता है, अपना शरीर छोड़ता है, उन लोगों के लिए भागवत नहीं है। जैसे पशु, पशुओं को ये नहीं पढ़ाया जा सकता। कम से कम जो आत्मा को जान चुके हैं भगवत गीता आदि पढ़ करके देह से भिन्न, उनके लिए श्रीमद् भागवत है वास्तव में, ये जानते हैं इस बात को। तो असद ग्रह शब्द प्रहलाद महाराज दे रहे हैं, टेम्पोररी वस्तुओं को, क्षणिक नाशवान दुखद वस्तुओं को हम लोग अपना बनाकर रखना चाहते हैं। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि हमारे परिवार का एक आदमी हमसे बिछुड़ पावे, हमारी ये वस्तु हमसे छीन ली जाए, हमारा ये हो जाए। और वस्तुओं की बात तो छोड़ दीजिए, ये प्रियतम शरीर छीन लिया जाता है आत्मा से, और आत्मा से शरीर छीना जाता है वास्तव में। आत्मा इसको नहीं छोड़ना चाहता, इतना उसकी दूषित चेतना हो गई है, शरीर को नहीं छोड़ना चाहता। ये शरीर बूढ़ा हो जाता है, चलने में असमर्थ हो जाता है, फिर भी आत्मा इसी में रहना चाहता है, ये देखा गया। लेकिन वो तो कोई घटना होती है, रोग होता है, ये होता है, उसके चलते उससे छुड़ाया जाता है। जो देह से विरक्त महान पुरुष होते हैं वे लोग देह को छोड़ते हैं, और जो अविवेकी है, मूर्ख है, उनसे देह छुड़ाया जाता है जबरदस्ती, और छोड़ना नहीं चाहता, जो असद ग्रह कहते। लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है कि प्रियतम शरीर भी छूट जाता है, फिर धन और स्वजन छूट जाए तो इसमें तो कहना ही क्या है ना, सब छूटता है ना। हम लोग तो प्रत्यक्ष देखते हैं, इसीलिए हम लोगों में, हम सनातन धर्मावलंबियों में यह प्रथा है कि कोई व्यक्ति बहुत दिन से बीमार रहता है और अब अनुमान हो जाता है कि मरने वाला है, तो उसके शरीर पर रहने वाले वस्त्र वगैरह सब छीने जाते हैं मरने पर। हमने देखा है वो जिस बेड पर रहता है उस पर मरने नहीं दिया जाता है, उसे नीचे उतारते हैं ना। और वो स्वजन और बैंक बैलेंस तो जीवित कई वर्ष पहले ही छूट जाते हैं, अब उसका साइन इन चलता नहीं है। और बच्चे ले जाकर के लिखवा लेते हैं कि हमारे पिता मरने वाले हैं, ये जबरदस्ती साइन लेते हैं। व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता है लेकिन फिर भी छोड़ा लिया जाता है। एक सत्य घटना आप लोगों को सुना रहा हूं, हमारे गांव के पास की घटना है, हमारे गांव के संबंधी की। तो बहुत बूढ़े हो गए थे व्यक्ति और ऐसा लगा कि अभी मर जाएंगे 15-20 दिन में, तो उनके नाम से बैंक में कुछ रुपया था। उनका लड़का सोचा कि इनसे हस्ताक्षर करा लेना चाहिए, निशान देते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इनसे निशान ले लेना चाहिए और बैंक में दे देना चाहिए कागज। तो बैंक, हाँ, उनको जब कागज लाया गया कि इस पर निशान दे दीजिए, तो कहते हैं ना नहीं करें। तो वो क्या करें, लड़के उनको ले जा रहे थे कहीं पर टांग कर अस्पताल में, तो रास्ते में रोके, तो खाट पर सुला करके ले जा रहे थे टांग कर। तो रास्ते में उस लड़के ने उनके अंगूठे को ऐसे पकड़ा, उसमें कालिख लगा करके और निशान ले लिया। निशान ले लिया तो उस बूढ़े को पता चल गया कि हाँ ये लोग निशान ले लिए, तो उस कागज पर थूकने का प्रयास किया सोए से, लेकिन फोर्स नहीं था, हवा नहीं थी मुंह में, तो थूक उसका ऐसे नीचे गिर गया, कागज पर नहीं गया। लेकिन निशान दे करके उसको मिटाना चाहता था कि हाँ ये निशान ले लिया, हमारा पैसा ले लेंगे। अरे मरने वाला है, सोचता है कि हमारा पैसा ले लेंगे, तो पैसा साथ में थोड़े जाता। तो ऐसे कई घटनाएं होती है, मरने वाले आदमी से घर के लोग पूछते हैं कहीं पैसा दिए हो किसी को, या कहीं गार करके सोना चांदी रखे हो बता दो, नहीं तो सोचते मर जाएगा तो सब बेकार पड़ा रह जाएगा। इसे सारा होलिया पूछ लेते हैं, कोई बाकी न रह जाए, न रह जाए, वो न रह जाए, पड़ा हुआ धन न रह जाए। तो मरने से पहले ही सब छीना जाएगा, और मरने पर तो फिर देह भी चला जाएगा। परंतु ऐसा ज्ञान है कि मनुष्य इन्हीं वस्तुओं को पकड़कर रखना चाहता है, इसको असद ग्रह कहते हैं या आग्रह। ग्रह का अर्थ पकड़ना है, ये भावना मान्यता, इन्हीं वस्तुओं को मैं मान चुका है, ये देह को मैं मान चुका है, वो अपने नित्य स्वरूप को, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, इसको नहीं जान रहा है। और कृष्ण के भक्त पार्षद ही हमारे संबंधी हैं, कृष्ण हमारे संबंधी, इसको नहीं जानता है। देह के जो संबंधी उन्हीं को मैं मानता रहता हूं, उन्हीं के योग क्षेम की चिंता करता है। और निश्चित है कि जो असद वस्तुएं हैं वो प्रकृति के गुणों के अनुसार रूपांतरित होंगी, वियोग होगा, वो वस्तुएं क्षीण होंगी, कटेंगी, हमसे वियुक्त होंगी और आदमी दुखी रहेगा। सदा समुद्विग्न ध्यान, असत को पकड़ने के कारण हमेशा बुद्धि उद्विग्न रहेगी, ये जीव की संसार में दशा है। तो ऐसे प्राणियों के लिए जिनकी हमेशा बुद्धि उद्विग्न है, दुखी है असत को पकड़ने के कारण, तो हे असुरवज, हे असुरराज, मैं तो ऐसे लोगों के लिए यही अच्छा मानता हूं, पहले अच्छा ये कि ये अपना घर छोड़कर वन में चले जाए। हित्वात्मपातम गृहम, गृहम हित्वा, अपना घर छोड़, और कहां चले जाए, वनम गतः, घर छोड़कर वन चले जाए, और वन में जाकर हरिम आश्रयता, भगवान कृष्ण का कोई भजन करें, बस यही मैं अच्छा मानता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज के युग में यदि वास्तव में बात कही जाए कि वन में चले जाए तो लोग कांप जाएंगे, वन में लेकिन गृह में क्या दिक्कत है, ये बात बताई जा रही है। सौभाग्य से जो गृहस्थ भगवान के साथ अपने संबंध समझ गए हैं, उनके लिए बात नहीं कही जा रही है। तो वन में रहे चाहे घर में रहे, कोई अंतर नहीं। घरों में भी भगवान का विग्रह देखते हैं, पूजा चलती है। आज ही आए थे दुलाल जी के घर से, तो समीप ऋषि जी ने पहले से मंदिर बना दिया है, एक परफेक्ट मंदिर जैसा लग रहा है। चाहे इनका जो वर्तमान घर है वो तो मंदिर से भी अधिक अनुराग से पूजा होती है, ये सत्य बात आपसे कहता है। बल्कि मंदिरों में तो सरकारी ड्यूटी जैसा लोग करते हैं, लेकिन अपने घर में जो पूजा होती है, जो स्त्री करती है चाहे बच्चा कोई करता है, तो बिल्कुल भगवान से संबंध जैसा जुड़ जाता है। वही खिलाएगा तो कृष्ण खाएंगे, वही उठाएगा तो उठेंगे। वहां कोई ड्यूटी मात्र नहीं पूरी की जाती है। घरों में मैं देख रहा हूं, भारत लक्ष में भी और इधर भी, तो जिन घरों में कृष्ण पहुंच गए हैं, उनका नाम जपा जाता है, प्रसाद खाया जा रहा है, उस गृह को यहां नहीं लिया गया। ध्यान रखना चाहिए, प्रहलाद महाराज सदा समुद्विग्न धियाम असद ग्रहा, उन लोगों के लिए बात बता रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए कह रहे हैं कि गृहम हित्वा, घर छोड़कर वनम गतः, वन में जाकर कृष्ण का भजन करें, इसको मैं अच्छा मानता हूं। अच्छा, क्यों घर छोड़ दें? क्योंकि आत्मपातम और अंधकूपम दो विशेषण दे रहे हैं। घर गृहस्थी जो है वो आत्मपात, आत्मपात का अर्थ है आत्मा का अधः पात करने वाला। आत्मा स्वरूप से कृष्ण का नित्य दास है, लेकिन गृह का ऐसा स्वभाव है। गृह का मतलब है स्त्री, और स्त्री से उत्पन्न दो चार बच्चे, ये गृह का ये मतलब है। गृह का अर्थ ये दीवार वगैरह नहीं है। न गृहम गृहम इत्याहुर गृहिणी गृह उच्यते, गृह को गृह नहीं कहा जाता है, गृहिणी को गृह कहा जाता है संस्कृत में। और गृहिणी क्यों, गृह को गृह क्यों कहते हैं? गृह को गृह इसलिए कहा जाता है, गृह शब्द जो है वो ग्रहण के अर्थ में है, जो पकड़ ले हमको उसको गृह कहा जाता है। आप दिन में कहीं जाइए, न्यूयॉर्क सिटी में काम कीजिए, कुछ भी, लेकिन शाम को अपने आप भागे भागे घर आ जाते हैं, वो पकड़ा हुआ है और रियल कारागार है वास्तव। कोई पहरेदार नहीं है, बाउंड्री नहीं है, लेकिन आकर अपने आप समर्पण। उस प्रसिद्ध कारागार से अगर कैदी छूटे तो ऐसे भाग जाएंगे कि पता ही नहीं लगेगा। लेकिन यह कारागृह ऐसा है कि क्या मजाल जिसे कोई निकाल कर भागे। आजीवन कारावास है इसमें, है ना। कोई संतरी नहीं है, कोई सिपाही नहीं है, पुलिस नहीं है और हथकड़ी बेड़ी प्रकट नहीं है, लेकिन सब घूम फिर करके घर में रहते हैं, इसलिए उसको गृह कहते हैं। और गृहिणी कहते हैं उस घर में जो रहती है। तो संस्कृत में कहा गया गृह है, घर को नहीं कहते हैं, गृहिणी को गृह कहते हैं। और वास्तव में यदि सत्य बात कहे जाए तो स्त्री के कारण ही वो घर है, नहीं तो घर नहीं रहेगा। आज स्त्री नहीं है तो डेरा उठाए अपना बैग घूमते रहे, कोई चिंता नहीं है ना, ये बिल्कुल फैक्ट है। और स्त्री नहीं तो पेड़ के नीचे भी सो जाएंगे, परंतु स्त्री है तो कहीं भी चलने के पहले सोचना पड़ता है, रिजर्वेशन ले लो, कहाँ ठहरेंगे, कैसे करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, घूमने में बहुत सोचना पड़ता है। यहाँ गृह का अर्थ है स्त्री, बच्चा, पैसा वगैरह से, केवल घर नहीं, केवल हाउस नहीं। तो ऐसे गृह, ऐसा जो गृह है वो आत्मा का पात करा देता, अधः पात करा देता है। आत्मा का पतन क्या है? आत्मा का पतन है कृष्ण भावना, उनको प्रणाम किया, गौरव किया, तो गृहपति हुए। वैसे गृह को छोड़ा क्या जाएगा, बल्कि दूसरा घर छोड़कर उस गृह में रहना चाहिए जहां भगवान का वास। लेकिन जनरल बात प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जो गृह है गृहस्थों के, आत्मा का पतन कराने वाले, और अंधकूप है उनकी उपमा दे रहे। अंधकूप, अंधकूप का अर्थ है अंधकार से भरा हुआ कुआं। कहीं कहीं ऐसे भारतवर्ष में कुएं अभी भी हैं, हम लोग इन शब्दों को पढ़ करके देखे हैं, ऐसे अंधकूप कौन कौन अंधकूप है। अंधकूप का अर्थ ऐसा कुआं जहां लोग अब पानी नहीं भरते हैं, पानी निकाला नहीं जाता है, रिजेक्टेड वेल, प्रभुपाद जी अनुवाद किए हैं कहीं पर, और गांव से बहुत बाहर है या जंगल में है। बरसात के दिन में बहुत घास बढ़ जाती है, घास बढ़ करके कुएं के ऊपर छा जाती है, नीचे नहीं दिखाई पड़ता है कि भयावह कुआं है, विषैला जल है और उसमें नीचे सांप भी है कुआं में, ये दिखाई नहीं पड़ता है। और कोई पशु लोभ से उस घास को चरने जाता है, क्योंकि घास बहुत बड़ी बढ़ जाती है, वो चरने जाता है और उसे पता नहीं रहता है, मूर्खतावश में पैर रख रहा हूं तो कुएं में पड़ रहा है, जैसे ही घास चरना चाहता है और पैर आगे बढ़ाता है तब तक धड़ाम से कुएं में गिर जाता है। घास भी नहीं मिली और बहुत चोट लगती है और कोई देख भी नहीं पाता है कि कोई पशु इसमें गिरा हुआ है, उसी में वो छटपटा करके चाहे दो चार घंटे या दो चार दिन या किस कितने दिन में मर जाता है, विश्वान भकूफ कहते। तो ये घर जो है अपना, ये इस तरह का अंधकूप है। अंधकूप इसको इसलिए कहा गया कि घर गृहस्थी बसाने पर आदमी मोहाच्छन्न हो जाता है, अज्ञान छा जाता है, वो सोचता है मैं ये हूँ, मेरा ये है, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इसको कहते हैं अंधकार, अपना स्वरूप गया, भ्रष्ट हुआ व्यक्ति, और ऐसे पशु की तरह गिर जाता है तो उसी में पड़े पड़े मर जाएगा। अगर कोई प्रीचर कहीं गया तो निकालेगा नहीं, तो ऐसे ही चला गया। तो कोई पशु कुआं में गिर जाता है और कोई घूमते घामते गया, और यदि दयालु आदमी है, समर्थ है, उसके पास रस्सी है या कुछ है, तो और लोगों को बुलाएगा, अरे भाई इसमें पशु गिरा हुआ है, इसको निकालो निकालो। तो इस तरह से प्रीचिंग पार्टी अगर घूमेगी कोई वैष्णव दयालु घूमेंगे, देखेंगे बेचारे घर गृहस्थी में गिरे हुए हैं, तो वो कुछ है शास्त्र द्वारा, भगवान के नाम द्वारा वो निकालेंगे। लेकिन अधिकांश ऐसे पशु गिरे हुए हैं उनके पास कोई पहुंच ही नहीं रहे, निकलने का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन पशु को अगर निकाला जाए कुएं से, कुछ मलहम किया जाए, पट्टी किया जाए, उसको मतलब ये बीड बैग और माला वगैरह दी जाए, तब धीरे धीरे होश में आएगा। तो वो ठीक से निकल सकता है, लेकिन ऐसा कर कोई नहीं रहा है। केवल प्रभुपाद जी हुए जिन्होंने कहा कि इस अंधकूप में गिरे हुए लोगों का उद्धार किया गया, घूमते नहीं। तो अधिकांश साधु तो ऐसे हैं कि उनके पास कोई जाएगा तब उद्धार करेगा, तो कुआं से निकल के कौन पशु जाएगा, और जब निकलने की शक्ति रहेगी तो आपकी क्या जरूरत है बताइए। ऐसे है ना अधिकांश। तो हम लोग जब प्रचार करते हैं तथा कहते हैं तो कुछ लोग बयान करते कहते क्या है आप लोग घूम रहे हैं और सुना रहे हैं, हर जिसको प्यास होगी वो खुद आएगा, वो कहते कुआं थोड़े प्यासे के पास जाएगा, जिसको प्यास होगी वो आपसे कथा सुनने आएगा, आपका प्रचार सुनेगा, ये करेगा। आप लोग क्यों घूमते हैं, ये गली में क्यों कीर्तन करते हैं, ऐसे स्पष्ट लोग कहते क्यों गली में कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में प्रहलाद महाराज की परंपरा में कुछ ऐसे कृपालु साधु महात्मा चाहिए जो कि घूमे, घूम घूम करके ऐसे पशुओं को निकाले और ऐसे कुओं पर वार्निंग लिख कर टांग दे कि मत गिर, ये घात गई है, कुआ है, गिर जाओ, भगवान का भजन करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा लिख दिया जाए कोई विवाह ना करे, ऐसा नहीं। लेकिन अंधकूप का मतलब यह है कि तुम ये मत समझो कि मैं देह हूं और देह के संबंधी मेरे हैं, ठीक है घर गृहस्थी स्वीकार करो, लेकिन जिस तरह घर के काम करने का व्रत लेता है उसी समय नाम जपने का भी व्रत ले। विवाह के समय में यह आवश्यक है कि दूल्हा जो है वो अपनी पत्नी के लिए जैसे अलंकार ले जाता है वैसे माला झोली भी ले जाए, ये जप शुरू में ही ये जरूरी है। ऐसा हम लोगों ने किया है वास्तव में, हमारे घर में हमारे भाई की बहुत सी लड़कियां थी जिनका विवाह हुआ, तो देखा गया कि हमारे घर में उन वरों को कुछ अलंकार दिया जाता था, कुछ भेंट दिया जाता था, तो उनको माला झोली भी दी जाती थी और किसी को विवाह के समय में ही उसके गले में झुलाई जाती थी। तो व्यक्ति तो एकाएक कंफ्यूज हो जाता था, ये क्या हो रहा है। नहीं, आपके वैवाहिक जीवन में एक जिम्मेवारी दी जा रही है भगवान का, दो चार माला जप करना है। बाद में उनको पता लगता था नहीं 16 माला करना होता है। वो लोग पहले कहते हैं ये लोग फंसाते हैं, पहले कहते हैं एक माला करो, दो माला करो, फिर कहते हैं नहीं 16 माला करना चाहिए। तो क्या करें, धीरे धीरे निकालना होता है, ये विधि है। तो प्रहलाद महाराज यही कह रहे हैं, यही सबसे अच्छी बात है कि भगवान की भक्ति किया जाए इस अंधकूप से निकलकर। इतना ध्यान रखिए कि जो लोग मंदिर आते हैं या भगवान का जप करते हैं, नाम का भागवत पढ़ते हैं, वैष्णव की सेवा करते हैं, भगवान के लिए दान देते हैं, वे अंधकूप में नहीं, वे तो दूसरों को निकालने वाले हैं। उसको अंधकूप नहीं कहेंगे, भगवत स्मृति शून्य जो गृहस्थ जीवन है उसको अंधकूप कहा गया है। तो ऐसे लोगों के लिए यही सबसे अच्छा है कि उनको हितोपपातम गृहम अंधकूपम, अंधकूप स्वरूप आत्मपात कराने वाले गृह को छोड़ करके वन में चले जाए और वन में जाकर भगवान हरि का आश्रय भजन करें, यही अच्छा है। तो प्रहलाद महाराज जैसा ज्ञानी बिल्कुल कंप्लीट रियलाइजेशन वाला व्यक्ति बोल रहा है, तो कैसे व्यक्ति से बोल रहा है जो कंप्लीटली संसार में आसक्त है, जो अजर और अमर होना चाहता है, होना चाहता भर था लेकिन उसकी चाह जो थी गलत। इस टेम्पररी जगत में या असत जगत में कोई नित्य जीवन चाहे तो यह उसकी मूर्खता है। नित्य जीवन है वो यहां नहीं मिलेगा, उसके लिए स्थान दूसरा है, वहां वो नित्य जीवन बिताए वैकुंठ में। भगवान ने स्थान बनाया कि यहां पर नित्य जीवन है, यहां अनित्य जीवन है, लेकिन कोई सोचे नहीं हम यही नित्य जीवन बनाएंगे, तो भगवान की सृष्टि थोड़े पलट सकता है। आखिर हिरण्यकश्यपु गया कि नहीं, तो अजय था ना, अमर था, अजर था, लेकिन अब कहां चला गया। गया, क्षण भर में ही भगवान ने उसे चीर चार कर फेंक दिया, उसकी आंत निकाल करके माला पहन लिए भगवान, ऐसा वर्णन है भागवत में। भगवान के पास कोई नहीं आ रहा था, तो सिंह का श्रृंगार तो खून और आंत यही होगा, फूल की माला रंग सिंह भगवान को पहनाई जाए तो शायद इतना खुश नहीं हुए होते। तो स्वयं ही उसके आंत को निकाल करके और पहन लिए। लोग बताते हैं कि मनुष्य की आंत बहुत लंबी होती है, कितनी फीट होती है, 36 से 35 फीट होती है ना, 22 फीट। वो तो हिरण्यकश्यपु की आंत कितनी लंबी होती है, वो तो पर्वत जैसा दिखता था, खड़ा होता था, ऐसा वर्णन है भागवत में। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष किरीट का स्पर्श बादलों से होता था, इतना ऊंचा थे वे लोग। तो मैं ये कह रहा हूं कि हिरण्यकश्यपु जैसा व्यक्ति भी चला गया इस असत संसार में, इस टेम्पररी संसार में। कोई असत्य राज्य की स्थापना कर नहीं सकता, शरीर ही नहीं बचेगा और क्या वो बचा सकता है। लेकिन यहीं पर हम दिव्य जगत की प्राप्ति के लिए भी साधना करें तो नित्य जीवन मिल जाएगा, जहां कोई बुढ़ापा नहीं है, मरण नहीं है, कोई दुख नहीं है, जिसे वैकुंठ कहते हैं। तो प्रहलाद महाराज यही कह रहे हैं कि इस असत संसार में, इस नाशवान जगत में और नश्वर वस्तुओं को जो पकड़ कर रखना चाहते हैं, शरीर को या संबंधियों को, वस्तु को, तो वस्तुएं टिक नहीं पाती हैं, इसलिए हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। कोई नहीं चाहता है कि हमारा संबंधी बीमार पड़े, लेकिन बीमारी आ ही जाती है। कोई नहीं चाहता है कि बुढ़ापा आवे, लेकिन बुढ़ापा आती ही रहती है। ये मरना नहीं चाहता, लेकिन लोग मरते ही रहते हैं, तो ये होता रहेगा। इस कारण से सदा सम उद्विग्न ध्यान, सम्य कंप्लीटली उद्विग्न बुद्धि रहती है। अतः ऐसे लोगों के लिए हे असुर वर्ज, मैं यही अच्छा मानता हूं कि भगवान की भक्ति करे, और उसमें भी घर छोड़ करके करे और अच्छा, क्योंकि घर पर होता नहीं है। जिनके भक्ति घर पर नहीं होती है, उन लोगों के लिए घर छोड़ने की बात की जा रही है। अगर घर पर हो रही है तो ठीक है, और नहीं हो रही है तो छोड़ देना चाहिए, यदि कोई सुखी होना चाहता है तो। दुख से बचना चाहता है तो घर छोड़कर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, यही मैं अच्छा मानता हूं। इतनी बात जब सुना हिरण्यकश्यपु, उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई? गोद में बच्चा बैठकर बोल रहा है, पोतली बोली में बहुत अच्छा लग रहा है, परम सुंदर लड़का गोद में बैठा और अपना जन्मा हुआ, उसकी बोली कितनी अच्छी लगेगी, उसका स्वर टोन अगर खूब अच्छा लग रहा था, लेकिन बात तो जहर के समान बोला, परंतु बच्चे पर क्रोध नहीं हुआ। हिरण्यकश्यपु उसकी बात को सुनकर हंसा। श्री नारद जी कहते हैं, श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्य परपक्ष समाहिता, जहास बुद्धि बाला नाम भिद्यते पर बुद्धि भी। पुत्र गिरह श्रुत्वा, पुत्र के वचन को सुना, तो पुत्र का वचन कैसा था? परपक्ष समाहिता, परपक्ष मतलब विष्णु पक्षे परिनिष्ठिता वाणी, जो भी बच्चा बोल रहा है उसका परपक्ष कहां जा रहा है? विष्णु के पक्ष में, ये वो सुना, ये जो बोल रहा है विष्णु की भक्ति परक वचन बोल रहा है, सुना। लेकिन सुन करके जहास हंसने लगा, अभी उसे दुख नहीं लगा, कौतूहल जैसा हुआ था, बच्चा है जो सिखा दिया गया सीख लिया, तुम इतना हल्का समझ रहे हो। वो सोचा कि सिखा देने से बच्चे सीख जाते हैं, कोई बता दिया होगा। जहास का अर्थ है हास, हंसा, और हंस करके क्या कहा, उसके मुख से क्या निकला, बाला नाम बुद्धि और बुद्धि भी भिद्यते, बच्चों की बुद्धि दूसरे के सिखाने से भिन्न हो जाती है, बदल जाती है। तो कोई आकर के बता दिया होगा बच्चा है सीख लिया, लेकिन बच्चे को मालूम नहीं है कि जिसके बारे में बोल रहा है वो मेरा कट्टर शत्रु, अभी अभी बाद में बताएगा। कि बेटा तुम जो ये बात बोल रहे हो, ये मेरा प्रसिद्ध शत्रु विष्णु है उसके पक्ष में बात बोल रहे हो, तुम शायद इस संस्कृत का अर्थ नहीं समझते हैं। श्लोक बोल रहे हो, लेकिन प्रहलाद केवल श्लोक नहीं बोल रहे थे, वो पूरा मतलब समझ करके बोल रहे थे। वो हंसा, कहा कि बाला नाम बुद्धि, बच्चों की बुद्धि पर बुद्धि भी दूसरे के बुद्धि से मतलब उपदेश से भिद्यते, भिन्न हो जाती है, दूसरे प्रकार की बुद्धि बदल जाती है। बच्चे हैं जो सिखाया जाएगा सीख लेंगे, कोई भी व्यक्ति कुछ सिखा सकता है, बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी सिखाया जा सकता है, उनकी मति ग्रहण कर लेती है। उनको तो मिठाई दे करके आदमी कुछ बात सिखाना चाहे तो सिखा दे, तो बच्चों की बुद्धि दूसरे की बुद्धि से भिन्न हो जाती है। इस तरह से कह करके हंसा और कहा, सम्यक विधार्जिताम्बा लो गुरु गेहे द्विजाति भी, उसने आज्ञा दिया गुरुपुत्रों को कि सम्यक विधार्जिताम्बा लो, इस बच्चे को ठीक से रखिए गुरु गेहे, गुरुकुल में इस बच्चे को ठीक से रखो। सम्यक विधार्जिताम्बा लो, ठीक से रखो, इसकी रक्षा करो, का मतलब कि इस तरह की कृष्ण की भक्ति में बात कभी ना सीखने पाए। ठीक से रखने का मतलब ये होता है एक बार भी हरे कृष्ण इसके मुंह से ना निकलने पाए। और हिरण्यकश्यपु के अनुसार ठीक और ठीक कोई दूसरा था, वो ठीक का मतलब ये समझ रहा है तो ये बात पड़े कि किस तरह पैसा कमाना चाहिए, किस तरह भोगना चाहिए, राजा बनना चाहिए, ये बताओ, ये क्या बता रहे हैं। ये नहीं कह रहा है कि ये क्या बताया, वो कह रहा था कि तुम लोग केयर नहीं किए, कोई न कोई विष्णु के पक्ष का कोई विष्णु भक्त आकर के इसको ये बात बताया, चाहे जब बताया, गुरु पुत्रों को भी क्रोध नहीं किया अभी, क्योंकि अभी लोगों का दोष नहीं है, कोई आकर के बता दिया होगा, लेकिन अब चेतावनी दे रहा है, सम्यक विधार्जिताम बालो, यह बच्चा ठीक से रखा जाए, ले जाओ और द्विजातियों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा इसको कूटनीति राजनीति की शिक्षा दो, और ये सब फालतू ये जो बकवास है विष्णु और विष्णु की भक्ति ये न सीखने पाए, खबरदार तुमको सावधान कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि किसके द्वारा इसकी बुद्धि फेरी जा सकती है, कौन फेरा होगा, तो कहता है विष्णु पक्ष, विष्णु के पक्ष में रहने वाले मतलब वैष्णव जो विष्णु के भक्त हैं उन लोगों के द्वारा इसकी मति फेरी गई होगी, इसको ये बात सिखाई गई होगी। तो उन लोगों ने कहा नहीं नहीं सरकार, कभी कोई वैष्णव नहीं आया स्कूल में, हम लोगों के गुरुकुल में कभी कोई वैष्णव आया ही नहीं, इसकी गारंटी है। तो हिरण्यकश्यपु कहता अरे मूर्ख, कहीं तुम लोग नहीं समझोगे, प्रतिक्षण नहीं, तुम लोग क्या समझते हो वैष्णव का मतलब तिलक धारण करना ना, तो लोग कहे हाँ, हम कंठी बांध कर चलते हैं और तिलक धारण करके चलते हैं, बीड बैग लेकर के या धोती पहन करके, तो कहता नहीं नहीं नहीं, वो कभी कभी कर्मी जैसा भी चलते हैं, तुम लोग नहीं पहचान पाओगे, प्रति क्षण में बहुत बहुत नाटक जानते हैं, भेष बदल बदल कर प्रीचिंग करते हैं, दूसरे वेष से आए होंगे और तुम लोग पहचान नहीं पाए, बहुत धूर्त होते हैं वैष्णव, वेश बदल करके वो विष्णु का प्रचार करते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक पर कहा करते थे कि भगवान का प्रचार वेश बदल कर किया जा सकता है, कोई ये ना समझे कि ये भक्त है, नहीं तो क्या होता है, वो जान जाता है कोई आदमी के इस्कान का भक्त तो पहले ही नाक भौंसी पड़ता है, अरे तो हरे कृष्ण की बात कहेगा, अरे कहेगा कि मांस मत खाओ, ये मत करो, ये मत करो, तो लोग पहले से दूर भागते हैं, ये तो बहुत बात बताएगा। इसीलिए कर्मी की पोशाक में पैंट वगैरह पहन करके, बल्कि सिखा भी कुछ लोग नहीं रखते हैं, या टोपी लगा लेते हैं कुछ, और जा करके वैसे बात करते हैं, मतलब जेंटलमैन जैसा, एक साधारण आदमी जैसा, वैष्णव जैसा नहीं। तो फिलॉसफी बताई जाती है देह और आत्मा के भेद को धीरे 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 मनुष्यता की बात करके, तब वो जैसे जैसे कन्विंस होता जाता है धीरे धीरे, तब माला झोली की बात करते, बाद में और सब बातें सिखाई जाती है। बहुत पहले से प्रचार की विधि रही है, इसीलिए तो हिरण्यकश्यपु कह रहा है, अरे वो छिप छिप कर प्रचार करते हैं, तुम लोग नहीं जानते हो, वेश वेशांतरण से वेश बदल बदल कर वो टीचिंग करते हैं, इसीलिए आपसे सतर्क रहो कि कोई ऐसा ना आने पाए। कितना दूर की बात बोल रहा है, कई बार ऐसा प्रचार वैष्णवों ने किया होगा, तब हिरण्यकश्यपु कह रहा है विष्णु पक्ष है प्रतिक्षण नहीं। प्रभुपाद जी कहते इन आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट द प्रैक्टिस ऑफ ड्रेसिंग ऑन सेल्फ लाइक एन आइडेंटिटी कर्मी इज नेसेसरी बिकॉज एवरी वन इन द डिमानीय किंगडम इज अगेंस्ट द वैष्णव टीचिंग्स। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट एट ऑल टू द लाइकिंग ऑफ द डीमंस ऑफ द प्रेजेंट एज। As soon as they see a Vaishnava dressed in saffron garments with beads on his neck and tilak on his forehead, they are immediately irritated. इस तरह से हो जाते हैं। They criticize the Vaishnavas by sarcastically saying, Hare Krishna. And some people also chant Hare Krishna sincerely. कुछ लोग तो सही में सिंसियरली बोलते हैं वैष्णव को देखकर हरे कृष्ण, लेकिन कुछ लोग बड़े कठोर शब्द बोलते हैं हरे कृष्ण ऐसे ऐसे करते। तो प्रभुपाद जी व्याख्या में कह रहे हैं कि हिरण्यकश्यपु को ही पता है कि वैष्णव लोग इस तरह से प्रचार करते हैं, जैसा समाज हो वैसा जाकर वैसा बन करके और वही भाषा बोल करके प्रीचिंग किया जाता है। हिरण्यकश्यपु जानता है कि वैष्णव प्रचार करते होंगे वो आ करके, और गुरुकुल में भी घुस गए होंगे इस डिमानीय यूनिवर्सिटी में और जगह वही लोग की है, इसलिए आज से सतर्क रहो कोई ऐसा आने न पावे, जो ये सीखा है वही सीखा है, इसको धीरे धीरे हटाओ इसके मन से, इसको भुलवा दो, ले जाकर ठीक से रखो, इस तरह बच्चों की बुद्धि फिर जाती। तो गृहम आनीतम आहूय, कुछ दिन अपने घर पर प्रहलाद महाराज रहे अपने माँ के साथ, लेकिन बाद में कुछ असुरों ने पहुंचाया, जब स्कूल खुला जब स्टार्ट हुआ तो स्कूल में ले गए गुरुकुल में, ले जाने के बाद ये दोनों गुरुपुत्र और भी ब्राह्मण दैत्य याजका वे लोग प्रहलाद को बुलाए ऑफिस में कार्यालय में, वो लगे पूछने, प्रहलाद को ये लोग डांटे नहीं पहले फुसला रहे थे, ये बता दे कि कौन आकर के ये श्लोक सिखाया तुमको, कहां का था, किस सेंटर से आया ये बता, केवल नाम और पता बता दो बस हिरण्यकश्यपु तो उसकी खबर ले लेगा। और ये लोग सोच रहे थे कम से कम हम लोग निर्दोष सिद्ध हो जाएंगे, नहीं तो बाद में वो कहेगा कि यही लोग सिखा रहे हैं। तो अपना दोष मिटाने के लिए और उस क्रिमिनल को उस अभियुक्त को पकड़ने के लिए किसने ये कृष्ण भक्ति का प्रचार किया उसका नाम पता पूछने लगे, बहुत फुसला कर प्रहलाद घर में आए तो उनको ऑफिस में बुलाए और बहुत प्रशंसा की, प्रशस्य, किसी से कुछ कहलवाना होता है तो उसकी प्रशंसा की जाती, प्रहलाद वास्तव में तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व है, तुम्हारी बुद्धि भी बहुत विकसित है, ये है वो है, बहुत तुम अच्छे हो, लेकिन बेटा हम तुम्हारे गुरु हैं, हम तुमको पढ़ाए हैं, हम तुमसे और कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन एक बात हम पूछना चाहते हैं तुमसे। बहुत प्रशंसा करके बहुत मधुर वाणी से बोले, वत्स प्रहलाद भद्रम पे, वत्स बेटा कह रहे हैं, इसी को वत्स को ही बेटा कहते हैं, बेटा प्रहलाद भद्रम पे तुम्हारा बहुत कल्याण होगा, तुमको हम लोग खूब मिठाई देंगे और भी चीज देंगे, सत्यम कथय, एक बात हम पूछ रहे हैं सत्यम कथय, सत्य बोलो, मान मृषा झूठ मत बोलना, ये दोनों बात कह रहे हैं, सच बोलो झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलना साच बोलो। बालन अति कुतस्थ भी ये सब बुद्धि विपर्यय, अन्य बच्चों से भिन्न तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? और बच्चे सब शराबी हैं, मांस खा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और तुम्हारी बुद्धि कैसे हो गई उल्टी? तुम्हारी बुद्धि कैसे हो गई? बुद्धि विपर्यय, तुम्हारे बुद्धि में ये भ्रम कहां से आ गया? क्या बुद्धि विपर्यय हुआ था कि जब तुम्हारे पिताजी नहीं चाहते हैं कि तुम कृष्ण भक्ति करो, तो कृष्ण के प्रति भक्ति का भाव कहां से तुमको आ गया? देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है। यहां प्रहलाद में कृष्ण भक्ति कैसे आ गई ये जानना चाहते, वो लोग उसको इरेज करने के लिए जानना चाहते हैं, उसका कारण कैसे उत्पन्न हुई भक्ति, उसको खत्म करने के लिए कारण जानना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों को कारण जानना चाहिए करने के लिए। जिस कारण से प्रहलाद की भक्ति जम गई तो वही हमें करना है, और वे तो इसलिए पता लगाना चाहते थे कि भक्ति को खत्म किया जाए, उसकी मूल पकड़ ली जाए, जड़ कहाँ है उसी को उखाड़ कर फेंक देंगे, खत्म हो जाएगी। तो जैसे तैसे चाहे अनुकूल भाव से इसको कोई सुने या प्रतिकूल भाव से, दोनों में हितकारी है। जो असुर होंगे वो तो पता लगाना चाहते होंगे भक्ति कैसे हो गई, खत्म करना चाहते हैं, और हम लोग तो चाहेंगे भाई कैसे भक्ति बढ़ती है उसका पता लगाओ। तो जितना वे उत्सुक थे जानने के लिए, प्रहलाद की बात सुनने के लिए, उतना ही उत्सुक हम लोगों को भी होना चाहिए। हाँ भाई, पता लगाया जाए प्रहलाद में कैसे भक्ति हो गई। तो पूछते हैं कि बच्चों से अति अति मन भिन्न तुम्हारी बुद्धि कैसे हो गई? सब बच्चे पढ़ रहे हैं, जो विषय दिया जाता है उसमें रस ले रहे हैं, संसार में धनी बनना चाहते हैं, राजा बनना चाहते हैं, उनकी तमन्ना दूसरी है, और तुम्हारी बुद्धि ये कैसे उल्टी हो गई? तुम उस दिन बोल दिए कि घर छोड़कर वन में जाना चाहिए, ये ऐसे उल्टी बुद्धि कैसे हो गई? अरे पढ़ाई लिखाई होती है, आदमी सोचता है कि ऐसे धन कमाऊंगा, घर बनाऊंगा, विवाह करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और तुम उल्टा सोच रहे हो और दूसरों को भी यही बता रहे हो। तुम उतना साहस करके अपने पिता के पास बोले तो ये तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? बुद्धि भेद परकृत, तुम्हारा बुद्धि भेद हुआ है दूसरे के करने से, कोई दूसरा सिखाया है क्या बेटा? बोलो बोलो, झूठ मत बोलो, सही सही बोलो, कोई दूसरा बताया तुमको? न तत्साधु मन्य असुरवर्ज देहिनां, ये श्लोक या श्लोक की व्याख्या कोई दूसरा बताया? स्वतो वा उताहोते स्वतो अभवत, कि अपने आप तुम्हारी बुद्धि में बात आ गई, कोई बताया कि अपने आप आ गई? क्या बात है बताओ? भयताम श्रोतु कामाना गुरुणाम कुलनंदना, तुम अपने वंश का आनंद बढ़ाने वाले हो, कुलनंदन हो, बड़े भाग्य से इस वंश में जन्म लिए हो। देखो हम लोग बहुत मेहनत किए हैं, पढ़ाए हैं, हम लोग गुरु हैं, और तुम्हारे मुख से केवल इतना सुनना चाहते हैं कि किसने आकर के बताया? अगर कोई आकर के पढ़ाया हो तो उसका नाम बता दो, या कम से कम ये बताओ कि किस दिन आया था, हम लोग फिर बाद में इंक्वायरी करेंगे। कोई दूसरा बताया कि अपने आप तुम्हारे मन में आ गया? अगर अपने आप आ गया होगा तो कोई अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत समस्या नहीं है। लेकिन दूसरा कोई बताया होगा तो उसका पता हम लोग राजा के पास दे देंगे, वो उसको मारेगा, पीटेगा, जेल में बंद करेगा, चाहे कत्ल कर दे, कुछ भी करे, हम लोग की जिम्मेवारी तो खत्म हो जाएगी। हम लोग तुम्हारे गुरु हैं, राजा के द्वारा विशेष आज्ञा दी गई है कि पता लगाओ कौन शिक्षा दिया है, कौन बताया है, कौन आकर तुमको माला दिया, हरे कृष्ण करने के लिए कहा, सो पता लगाया जाए। बड़ी बड़ी सुंदर इंक्वायरी है। कौन आकर कहा, अय्या की स्वतः ही स्वतः अवतिया, बिना किसी के सिखाए अपने आप तुम्हारे मन में बातें आ गई। भय लेता हूं तुम बोलो, श्रोतु कामना, सुनने की हम लोगों को बहुत अभिलाषा है, सुनने के हम लोग ललायत हैं, इसलिए बोलो। तो प्रहलाद महाराज यह सुनकर कैसे कहें कि नारद जी ने हमको भक्ति दिया, नहीं तो उनको भी गाली देने लगते। हिरण्यकश्यप कहता है कि वो वीणा बजा बजा कर आता है, बात इतना मधुर करता है, वो कपटी वो दुष्ट नारद, इसलिए ये नाम नहीं बता रहे हैं। और कहते कि नारद जी की कृपा से मुझे भक्ति मिली है, तो गाली देने लगता गुरु को, इसलिए अपराध लगता प्रहलाद महाराज को, तो ये नहीं बता रहे हैं। और वास्तविक जो कारण है, सर्व कारण कारण भगवान उन्हीं को बता रहे हैं। भगवान के बारे में तो लोग कुछ भी छोड़े नहीं है, बाकी अब गाली दे चाहे कुछ भी करे। तो ये कहते हैं, पर स्वश्चित असद ग्राह पुंसान जन माया करता है, जिनकी माया के द्वारा, बहिरंगा माया शक्ति के द्वारा किसी जीव में यह अपना है यह पराया है इस प्रकार का भेद भरा जाता है बुद्धि में, और बुद्धि मोहित होती है जिनकी माया शक्ति से, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। वो क्या प्रश्न पूछ रहा है तो क्या उत्तर दे रहे वो लोग पूछेंगे कौन तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है, तो ये कह रहे हैं भगवान को मैं प्रणाम करता हूं जिनकी माया सबके बुद्धि को भ्रष्ट कर रही है। वो गुरु के पुत्र कुछ समझे नहीं ये क्या कर रहा है। जिनकी माया से लोगों की बुद्धि विमोहित होती है, भ्रष्ट होती है, और तब कहते हैं कि मेरा है ये पराया है, वो शत्रु है वो मित्र है, ये हमारा है ये मैं हूं, इस प्रकार की विविध बुद्धि जिनकी माया के कारण होती है, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूं। तो क्या इनके कहने का यह मतलब था कि कृष्ण हमारी बुद्धि को फोड़ रहे हैं? तो कृष्ण को क्या पकड़ सकते थे? उनको कहां से मंगवाते और पिटवाते क्या करते? स जदानुव्रत पुंसान पशु बुद्धि विभिद्यते अन्य ऐसा तथा हम इति भेद गता सके। जब कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है, मैं इन श्लोकों को संक्षेप में कह रहा हूं, प्रहलाद जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान का अनुव्रत होता है, उसके कर्मों से उसके भक्ति से भगवान जब प्रसन्न होते हैं, तब उस व्यक्ति की यह पशु बुद्धि समाप्त होती है। क्या पशु बुद्धि है? यह मैं हूं वह तुम हो, या मेरा है वह दूसरे का है, इस तरह से भेद परक जो असत्य कंडम बुद्धि है वो चली जाती है। बिना भगवान की प्रसन्नता के, भगवान की भक्ति किए बिना ये बुद्धि नहीं जाएगी। जब भगवान की भक्ति होती है तब इस प्रकार की बुद्धि जाती है, असत बुद्धि। अच्छा, वो प्रश्न पूछ रहे थे कि ये असत्य बुद्धि तुमको कहां से मिली, ये कंडन बुद्धि, इस तरह की बुद्धि कहां से मिली? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जब कोई भगवान की भक्ति करता है तब मेरे जैसी कंडन बुद्धि होती है। और उसको प्रकारांतर से प्रशंसा कर रहा हूं। और ये कहते हैं कि ये जो है पशु बुद्धि है, कि यह मैं हूं, ये तेरा है, ये है शत्रु है मित्र है, इस प्रकार की पशु बुद्धि तब जाती है जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है। तो सयेष आत्मा स्वपरित बुद्धि में गुरुत्या क्रमणों निरूप्यते। जिन लोगों की बुद्धि यही धारणा की है कि यह मेरा है, ये पराया है, ये दूसरे का है, ये है वो है, तो ऐसे लोगों के द्वारा भगवान का ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन है, वो लोग नहीं समझ सकते हैं। यहां तक कि वेद के अनुसार चलने वाले वेदवादी मुनि भी मोहित हो जाते हैं। तो जिनका ज्ञान होना बड़ा कठिन है, यहां तक कि ब्रह्मा आदि भी जिनके विषय में ठीक ठीक नहीं जानते हैं, वही बुद्धि वही प्रभु ये सब जो मेरे हृदय में है, मैं मति भिन्नति, मेरी बुद्धि को भेद कर रहे हैं। मतलब भगवान हमारे हृदय में है परमात्मा के रूप में, और बस चाह हम हृदय सन्निविष्ट मत स्मृति ज्ञान मपोहनम च, वही मेरी बुद्धि को इधर उधर कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, लगा रहे हैं। उदा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, वो लोग नहीं समझे तो दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। यथा भ्राम्यति अय, जैसे लोहा, लोहा का एक टुकड़ा आकर्ष सन्निध, जैसे चुंबक के समीप आने पर चुंबक के अनुसार खींच जाता है, चुंबक जैसे उसको नचाता है, उसे नाचता है, तथा में भिद्यते चेतस चक्र पाणे जदृच्छ, उसी तरह से चक्र पाणी के द्वारा मेरी बुद्धि घुमाई जा रही। मतलब भगवान कृष्ण मेरे बुद्धि को अपने तरफ खींच रहे हैं, वे हृदय में बैठे हुए, और फिर इतना कहकर भगवान को प्रणाम किया। तो ये दोनों ब्राह्मण के लड़के टीचर वे तो बहुत दुखित हो गए सुनकर। वे सोच रहे थे कि ये टाल रहा है, ये बता नहीं रहा है। प्रश्न से भिन्न उत्तर दिए ना, वो लोग पूछे कि अपने आप तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो रही है कि कोई बताया है, तो बताने वाले को भी नहीं कह रहे। बताने का मतलब वो नहीं कह रहे तुम्हारे हृदय में कोई दे रहा है बुद्धि, हम ये नहीं सुनना चाहते। अरे कोई कहीं से आया बताने के लिए तुमको, वृंदावन से या मायापुर से कोई आया कि क्या किया, कोई आया बाहर से तो बताया नहीं, कह रहे भीतर से चक्रपाणी हमारे हृदय को बदल रहा है, तो स्वतः भी नहीं हुआ। वो लोग पूछे थे कि तुम्हारी अपने आप बुद्धि हो रही है दूसरे के द्वारा, अरे नहीं किसी के द्वारा नहीं, कृष्ण के द्वारा, और अपने आप बुद्धि तो ऐसी हो ही नहीं सकती, उन्होंने ये कहा। तब ये लोग अब सोचे कि बिना धमकाए और मारे ये नहीं बताएगा कौन सिखाया है, इसको तो जरूर कोई आकर बताया होगा, बिना बताए कैसे हो जाएगा। तो लोग कहते, नारद जी कहते, एतावत ब्राह्मणायुक्त्वा विरराम महामति, उन ब्राह्मणों से इस प्रकार कह करके प्रहलाद महाराज चुप हो गए। चुप हो गए तो वे लोग समझे कि ये ऐसे नहीं बताएगा। तम संनिर्भर्ष, तब भर्सना की, डांट डपट की, अरे दुष्ट कुलंगार, तुम ऐसे नहीं बताओगे, अभी हम तुम्हारी मरम्मत कर देते हैं। लोग केवल फड़क भड़क कर रहे थे, राजा का बेटा था इसलिए मार नहीं सकते थे लेकिन खूब धमकी दे रहे थे। कुपित तो सुदीनो राज सेवक, और लोग कुपित हो गए ब्राह्मण, राजा के दास थे, और राजा का लड़का इस तरह बिगड़ कर माटी हो रहा है, वो बिगड़ रहा है, कृष्ण भक्ति कर रहा है, तो उसको सुधारना था। तो वो लोग कहे, आनीय काम अरे बेत्र, किसी से भी ऐसे कहता, अरे जरा बेत बेत लाओ बेत, ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं बताएगा। ऐसे जब आदमी कुपित होता है तो कहता है ना, जरा डंडा लाओ, कोई लावे या न लावे एक मुख से निकलता है, जरा डंडा लाओ डंडा लाओ, डंडा नहीं रहने पर जूता निकाल कर मारने लगा आनीयतम अरे बेत्रम, अरे बेत्रम आनीयतम, जरा बेत लाओ बेत लाओ, बेत निकट ही था, कोई लाया नहीं। लेकिन प्रहलाद को इसलिए सुना रहा था कि शायद सुनते ही प्रहलाद कह देगा, अब बता रहा हूँ, नहीं हमको पीटो मत मैं बता रहा हूँ कौन मुझको सिखाया है। ऐसे करते हैं ना बच्चे, अगर उनको धमकी दिया जाए तो वो बता देते हैं सत्य बात। आनीय काम अरे बेत्रम, अरे बेत लाओ बेत लाओ, अस्माकम जसस कर, ये तो हमारे जस पर पानी फेर देगा, हमको हमारे जस पर कलंक लगाने वाला है। क्या कलंक लगाने वाला है? हम लोगों का अपजस संसार में फैलेगा कि इन लोगों ने कृष्ण भक्ति सिखा दिया। अब ये देखिए, गुरु भी चौपट ही है पूरा, इसको अजस मान रहा है और ये फैलेगा संसार में संवाद कि गुरुओं ने प्रहलाद की मति को विष्णु में लगा दिया, तो ये समझ रहे हैं कि हमारी बहुत बदनामी है। अस्माकम अजसस कर, कम से कम हिरण्यकश्यपु की दृष्टि से बोल रहे हैं, हिरण्यकश्यपु तो कहेगा कि इन लोगों ने सब किया है, तो हम लोग कहाँ सिलेबस के अनुसार पढ़ाने वाले टीचर हैं, और दुनिया में सब जगह फैलेगा कि नहीं ये लोग तो दगाबाज हैं, ये लोग तो कृष्ण भक्ति सिखा रहे हैं, तो हम लोगों का नाम तो पहले डूबेगा, ये ऐसा काम कर रहा है कितना उल्टा सोच रहा है, तो बहुत जस की बात है ना। अगर किसी के चलते प्रहलाद में भक्ति उत्पन्न हुई है, कितना बड़ा जसस्वी व्यक्ति है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमारे जस पर पानी फेर देगा, अजसस कर, अपजस कराएगा, कुलंगार, ये कुलंगार। अच्छा, इसके पहले वो लोग कुल नंदन कहे थे कुल का नाम बढ़ाने वाला, आनंद देने वाला, और अब क्रोधित हो गए तो कहते कुलंगार कहेंगे। कुल की परंपरा नहीं देख रहा है, टेलीविजन नहीं देख रहा है, सब लोग विष्णु के विरोधी हुए और भक्त निकल गया। कुल के अनुसार चलना चाहिए ना, तुम्हारा चाचा कितना विष्णु का द्रोही था, और तुम्हारे चाचा को मारा है वो गरा रूप धारण करके विष्णु, और फिर भी उसी के भक्त बन गए, अपने कुल के अनुसार चलो। बहुत लोग वास्तव में इस पद्धति में फंसे हुए हैं। एक दिन मैं गया था, व्यक्ति से कहा कि आप महामंत्र जपिए, तो कहते नहीं हमारे कुल में तो हम लोग 50 साल से यही जपते आ रहे हैं, कोई दूसरा मंत्र। हम लोग 50 साल से दत्ता दत्ता जपते आए हैं, इसलिए यही जपते। अरे 50 साल क्या, अनादि काल से तो विषय भोग नहीं रहा है आदमी, तो इसको नहीं छोड़ेगा। महामंत्र जपते हैं तो सब महामंत्र है, सब शब्द महामंत्र है जो जपो इस तरह। तो ये पुरोहित लोग तो राजा के सेवक हैं, वास्तव में इनको क्या विष्णु से मतलब या विष्णु से द्रोह भी इनको नहीं है, लेकिन है राजा के सेवक, इसलिए राजा को खुश करना है जैसे भी हो। एक बार की कथा है, लोग अकबर बीरबल की बात सुनाते हैं, आप लोगों ने शायद सुना होगा, बीरबल मंत्री थे अकबर जी के। तो एक बार अकबर ने कह दिया कि बैगन बहुत बुरी सब्जी है, बहुत खराब सब्जी। तो बीरबल ने कहा जी वास्तव में बैगन के समान खराब सब्जी कोई नहीं, लेकिन एक बार कहीं सब्जी खाए अकबर बैगन की, तो बिगुण कहते हैं बिना गुण के जो भी हो बैगन, उनको बड़ा अच्छा लगा। तो वो कहे अकबर कहे उस दिन कि बीरबल जी बैगन बहुत अच्छी सब्जी है, बहुत अच्छा लगता है। तो कहे सरकार बैगन के समान कोई सब्जी ही दुनिया में नहीं है। तो अकबर थोड़ा सा रन जैसा होता कि ये तुम क्या कर रहे हो, उस दिन कह रहे थे कि सबसे खराब सब्जी है, आज कह रहे थे कि सबसे बुरी सबसे अच्छी सब्जी है। तो बीरबल कहे सरकार मैं बैगन दास नहीं हूँ, मैं अकबर दास हूँ। आप जब अच्छा कह रहे थे तो अच्छा कह रहा है, और आप बुरा कह रहे थे तो बुरा कह रहा है। मैं तो आपका दास हूँ ना, मैं बैगन दास नहीं हूँ, ये अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो मुझे बैगन से क्या लेना चाहिए, आप जैसे खुश रहे वो बात बोलने मेरा धाम। तो ये गुरु लोग ऐसे थे, पुरोहित लोग। जब विष्णु भक्ति को बुरा मान रहा है तो उसको बुरा कहना है, जिस दिन अच्छा कहेगा तो अच्छा कहना है। ये लोग प्रहलाद को धमकी दे रहे हैं, कुलांगारस दुर्बुद्धे चतुर्थो असोदितो दम, इसके लिए चौथी नीति काम करेगी। बस चौथी नीति का मतलब होता है दम, दंड। पहली नीति है, ये सब जगह नीति चलती है, खास करके राजाओं की नीति है, साम दान भेद और दंड। साम का अर्थ प्रशंसा करना, कोई व्यक्ति किसी के प्रति बगावत कर रहा है तो कोई दूसरा मिनिस्टर या राजा उसको समझाता है आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं, आपके विरोध कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना। उस पर भी नहीं मानता है तो उसको कुछ पैसा देता है या पोस्ट बढ़ा देता है, उसको दाम कहते हैं। उस पर भी नहीं मानता है तो उसे भेद डालता है, कुछ बात उससे फूट डालता है, उससे भी काम नहीं चलता और शक्ति होती है तो दंड देता है। तो चौथी तुर्ज, ये लोग कहते हैं अरे तीन से काम नहीं चलेगा, इसको दंड देना ही पड़ेगा। दुर्बुद्ध है, इसकी बुद्धि दूषित हो गई है, अपने पिता के अनुशासन से बाहर जा रहा है, इसे लाओ बेंत। किसी ने कहा होगा बेंत क्यों लाए, तो लोग कहेंगे बस पीटने के लिए लाओ, इसको मारेंगे। दैत्य चंदन बने जातो यम कंट का द्रुम, दैत्यों का वंश कितना अच्छा है, चंदन वन जैसा है, लेकिन उस चंदन वन को काटने के लिए बबूल कहां से जन्म ले लिया। और जन मूलन मूल परसो विष्णु मालाई पर भका, दैत्यों के चंदन वन को काटने के लिए विष्णु परसु जैसा है, कुल्हाड़ी जैसा, और उसमें ये बेंट का काम कर रहा है। बेंट समझते हैं ना, बेंट नाल को कहते हैं, जो कुल्हाड़ी देखे हैं ना आप लोग, कुल्हाड़ी में बबूल का या बांस का बेंट लगाते हैं गंदा, तो उसके सहारे से कुल्हाड़ी ज्यादा काटती है। अगर बेंट ना हो उसमें दंड न लगा हो तो हाथ से पकड़ कर कितने काटेंगे। तो विष्णु जो है वो दैत्यों के चंदन वन को काटने के लिए, चंदन वृक्ष को काटने के लिए परसु जैसा, कुल्हाड़ी जैसा है, और उसमें ये सहारा दे रहा है। नालायता मन नाल जैसा बन रहा है, बच्चा होते ही विष्णु को सहारा देने लगा। तुमको पता नहीं कि आज तक विष्णु क्यों दैत्यों को मारा है, तुम्हारे वंश पर पड़ा हुआ है, अभी तुम्हारे चाचा को मारा है और तुम उसके भक्त हो गए। ठीक तो उसको कह रहा है कि दैत्यों का जो वंश है वो चंदन का वृक्ष है और प्रहलाद बबूल हो गए, कंटक द्रुम। कंटक द्रुम मतलब कांट वाला वृक्ष हो गए, नालायक। कितनी उल्टी बुद्धि उनकी है। वास्तव में इस वंश में अगर कोई सबसे श्रेष्ठ हुआ तो प्रहलाद महाराज है लेकिन असुरों को चंदन का वृक्ष बता रहे हैं और इनको बबूल का वृक्ष बता रहे हैं कंटक ध्रुव, उल्टी बुद्धि हो गई। इस प्रकार से बहुत तड़क भड़क किए, पूछते रहे लेकिन प्रहलाद महाराज कुछ नहीं बताया। फिर लोग पढ़ाने लगे वही पाठ जो पहले पढ़ाते थे, जो ठीक पढ़ने लगे। खूब पढ़ाए लिखाए, साल भर के बाद फिर हिरण्यकश्यपु के पास ले गए। खूब पूछ लिए थे, जितना पढ़ाते थे पूछते थे तो प्रहलाद बोल देते थे, बड़े ब्रिलियंट है स्टूडेंट थे विद्यार्थी, सब बता देते थे। लोग खुश हुए कि इस बार ले जाएंगे तो राजा बहुत खुश होगा हम लोगों पर और हमारा वेतन बढ़ाएगा। लेकिन इस बार ले गए तो इस बार हिरण्यकश्यपु ये नहीं पूछा कि क्या अच्छी बात, एक अच्छी बात बताओ, ये नहीं पूछा। वो कहा सबसे बेस्ट बात बताओ, जितने पढ़े हो उसमें से सबसे अच्छी बात बताओ। तो इस बार उन्होंने बताया श्रवणम कीर्तनम। ये कथा हम लोग कल से सुनेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बाण से तात्पर्य वही बन है ना, जिंदा बाण या और भी कई बन है, दंडक बन, चित्रकूट। जहाँ भक्ति हो सके वो बन। आज के युग में आप ये नहीं समझना चाहिए कि तब हमारे ही बन में चल दे, जहाँ भजन हो सके वहाँ रहना चाहिए, करना चाहिए। वैष्णव का संग मिलता रहे इसकी कामना रहनी चाहिए, सबसे अच्छा ये है।